नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद पहला अध्याय 12 श्लोक क्रमांक 24। सर्व सद्गुण महात्म्ये एष कृष्ण अनुव्रतः रन्ति देव इवोदारो ययाति इव धार्मिकः। सर्व सद्गुण महात्म्ये एष कृष्णम् अनुव्रतः रन्ति देव इवोदारो ययातिर इव धार्मिकः। सर्व सद्गुण महात्म्ये एष कृष्णम् अनुव्रतः रन्ति देव इवोदारो ययातिर इव धार्मिकः। सर्व सद्गुण महात्म्ये एष कृष्णम् अनुव्रतः रन्ति देव इवोदारो ययातिरिव धार्मिकः। सर्व सत गुण महात्म्य, समस्त दैवी गुणों से महिमान्वित एषः यह बालक कृष्णम भगवान कृष्ण की तरह अनुव्रतः उनके पदचिन्हों पर चलने वाला रंतिदेव इव सदृश उदार ययाति इव सदृश धार्मिकः धर्म के मामले में। अनुवाद और तात्पर्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। यह बालक भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्हों का पालन करते हुए उन्हीं के समान होगा। उदारता में यह राजा रंतिदेव के समान तथा धर्म में यह महाराज ययाति की भांति होगा। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश है कि मनुष्य सब कुछ त्याग कर भगवान के ही चरण चिन्हों का अनुसरण करे। दुर्भाग्यवश अल्पज्ञानी लोग इस महान उपदेश को स्वीकार नहीं करते, किंतु जो सचमुच बुद्धिमान है वह इस भव्य उपदेश को ग्रहण करके तुरंत लाभान्वित होता है। मूर्ख लोग यह नहीं जानते कि संगति से ही गुण ग्रहण किए जाते हैं। यहां तक कि भौतिक अर्थ में भी अग्नि की संगति से कोई भी वस्तु गर्म हो जाती है। अतएव भगवान की संगति से मनुष्य भगवान के ही समान योग्य बन जाता है। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, भगवान की घनिष्ठ संगति से हम 78% दैवी गुण प्राप्त कर सकते हैं। भगवान के आदेशों का पालन करना ही भगवान की संगति करना है। भगवान कोई भौतिक वस्तु नहीं जिसकी उपस्थिति ऐसी संगति के लिए अनुभव की जाए। भगवान सर्वत्र और सभी काल में उपस्थित रहते हैं। संभव है कि केवल उनके आदेश पालन करने से ही उनकी संगति प्राप्त हो जाए, क्योंकि भगवान एवं उनका आदेश तथा भगवान एवं उनका नाम यश गुण तथा साध सामान परम ज्ञान होने के कारण उनसे अभिन्न है। महाराज परीक्षित अपनी माता के गर्भ से लेकर अपने अमूल्य जीवन के अंतिम क्षणों तक भगवान की संगति में रहे, अतएव उन्होंने भगवान के सारे अनिवार्य उत्तम गुण पूर्णतया अर्जित कर लिए थे। रंतिदेव ये महाभारत काल से भी पहले के प्राचीन राजा हैं, जिनका उल्लेख नारद मुनि ने संजय को उपदेश देते हुए किया था। जैसा कि महाभारत से ज्ञात होता है कि द्रोण पर्व में ये महान राजा थे और आतिथ्य के लिए तथा भोजन वितरण करने के लिए विख्यात थे। यहां तक कि भगवान कृष्ण ने भी इनके दान तथा आतिथ्य की प्रशंसा की थी। वशिष्ठ मुनि को शीतल जल प्रदान करने के कारण उन्हें उनसे वर प्राप्त हुआ, जिससे वे स्वर्ग लोक गए। वे ऋषियों को फल कंद तथा पत्तियां पहुंचाया करते थे, जिससे इच्छा पूर्ति होने के कारण वे आशीष दिया करते थे। यद्यपि वे जन्म से क्षत्रिय थे, किंतु उन्होंने कभी भी मांस भक्षण नहीं किया। उन्होंने वशिष्ठ मुनि का विशेष आतिथ्य किया और उनके आशीर्वाद से ही उन्हें स्वर्ग लाभ हुआ। वे उन राजाओं में से हैं जिनका स्मरण हर प्रातः तथा संध्या समय किया जाता है। ययाति ये विश्व के महान सम्राट तथा आर्य भारोपीय कुल से संबंधित समस्त महान राष्ट्रों के आदि पूर्वज थे। ये महाराज नहुष के पुत्र थे और अपने बड़े भाई के मुक्त योगी हो जाने पर विश्व के सम्राट बन गए थे। उन्होंने कई हजार वर्षों तक राज्य किया और उनके यज्ञ तथा पूर्ण कार्य किए, जिनका इतिहास साक्षी है। यद्यपि उनका प्रारंभिक यौवन अत्यंत वासनामय तथा प्रेमपूर्ण कहानियों से भरा पड़ा था, वे देवयानी के प्रेम पाश में फंस गए जो शुक्राचार्य की सर्वाधिक प्रिय पुत्री थी। देवयानी उनसे विवाह करना चाहती थी, किंतु ब्राह्मण की पुत्री होने के कारण ययाति ने पहले उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। शास्त्रों के अनुसार केवल एक ब्राह्मण ही ब्राह्मण की कन्या के साथ विवाह कर सकता है। वे विश्व में वर्ण संकर जन संख्या के प्रति विशेष सतर्क रहते थे, लेकिन शुक्राचार्य ने वर्जित विवाह के इस नियम को संशोधित करके राजा ययाति से देवयानी को स्वीकार करने के लिए आग्रह किया। देवयानी की सखी शर्मिष्ठा थी, जो राजा से प्रेम करने लगी थी, अतएव वह अपनी सखी देवयानी के साथ ससुराल गई थी। शुक्राचार्य ने सम्राट ययाति को मना किया कि वह शर्मिष्ठा को अपने शयन कक्ष में न बुलाए, लेकिन ययाति उनके आदेशों का दृढ़ता से पालन न कर सके। उन्होंने चुपके से शर्मिष्ठा से भी विवाह कर लिया, जिससे उनके कई पुत्र हुए। जब इसका पता देवयानी को पता चला तो उसने अपने पिता से शिकायत की। ययाति देवयानी के प्रति अत्यंत आसक्त थे, अतएव जब वे अपने श्वशुर के घर से उसे बुलाने गए तो शुक्राचार्य ने क्रुद्ध होकर शाप दे दिया कि वह नपुंसक हो जाए। ययाति ने अपने श्वशुर से विनती की कि वे शाप को वापस ले लें, लेकिन मुनि ने ययाति को यौवन लौटाने की शर्त के तौर पर उनसे कहा कि वे अपने पुत्रों का यौवन लेकर उन्हें वृद्ध एवं नपुंसक हो जाने दें। उनके 5 पुत्र थे, जिनमें से 2 देवयानी से उत्पन्न हुए और 3 शर्मिष्ठा से। उन 5 पुत्रों का नाम यदु, तुर्वसु, द्रुहु, अनु तथा पुरु से क्रमशः 5 विख्यात वंशों का उद्भव हुआ। यदुवंश, यवन, तुर्कवंश, भोजवंश, म्लेच्छ वंश तथा पौरव, ये सारे वंश विश्व भर में फैल गए। वे अपने पुण्य कर्मों से स्वर्ग लोक पहुंच गए, लेकिन आत्म विज्ञापन तथा अन्य महात्माओं की आलोचना करने के कारण उन्हें वहां से नीचे आना पड़ा। उनके पतन के बाद उनकी कन्या तथा पौत्र ने उन्हें अपने सारे संचित पुण्य प्रदान किए और वे अपने पौत्र तथा अपने मित्र शिबि की सहायता से पुनः स्वर्गलोक में पहुंच सके, जहां वे यमराज की सभा के सदस्य बने और भक्त के रूप में वहीं रहते रहे। उन्होंने 1000 से अधिक यज्ञ किए और मुक्त हस्त दान दिया। वे अत्यंत प्रभावशाली राजा थे, सारे विश्व में उनका दबदबा था। जब वे काम वासना से 1000 वर्षों तक अत्यधिक पीड़ित रहे तो उनके सबसे छोटे पुत्र ने उन्हें अपना यौवन अर्पित किया। अंततः वे सांसारिक जीवन से विरक्त हो गए और उन्होंने अपने पुत्र पुरु को उसका यौवन लौटा दिया। उन्होंने पुरु को राज्य भी सौंप दिया, लेकिन उनके दरबारी तथा प्रजागण इसके लिए राजी नहीं हुए। किंतु जब उन्होंने उनसे राजा पुरु की महानता का बखान किया तो वे उसे राजा स्वीकार करने के लिए राजी हो गए और इस तरह सम्राट ययाति गृहस्थ जीवन से विरक्त होकर गृह त्याग कर वन चले गए। सर्व सद्गुण माहात्म्ये एष कृष्णम् अनुव्रतः रंतिदेव इवोदारो ययातिर इव धार्मिकः। यह बालक भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्हों का पालन करते हुए उन्हीं के समान होगा। उदारता में यह राजा रंतिदेव के समान तथा धर्म में यह महाराज ययाति की भांति होगा। इस सुंदर अध्याय में महाराज परीक्षित के गुणों का बखान किया है, जिसमें महाराज परीक्षित की तुलना इन सब महानुभावों से की गई है। हम देखते हैं कि वैदिक संस्कृति में श्रीमद् भागवत की प्रथा के अनुसार बालकों के ये सब तुलनात्मक व्यक्ति हुआ करते थे। आजकल हम देखते हैं कि बालकों को यदि पूछा जाए कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहोगे, तो कौन कहेगा कि मैं बड़े होकर युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज, प्रहलाद महाराज जैसा बनना चाहूंगा। आजकल बालकों को पूछा जाए तो बोलते हैं क्रिकेट स्टार बनना चाहूंगा, सिनेमा का कोई हीरो या हीरोइन बनना चाहूंगा। परंतु यहां पर देखिए, परीक्षित महाराज, उनकी तुलना की गई है महाराज रंतिदेव, महाराज ययाति इनसे, और पिछले श्लोकों में भी परीक्षित महाराज की तुलना ऐसे ही व्यक्तियों से, ऐसे ही स्थितियों से, पदार्थों से की गई है जो कि भगवान से संबंधित हैं। और विशेष रूप से श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि सबसे बड़ा गुण क्या था परीक्षित महाराज का, कि परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत सुनाई। इस श्लोक में भी लिखा गया है, सर्व सद्गुण महात्म्य एष कृष्णम अनुव्रतः, कि दैवी गुणों से महिमान्वित, सबसे पहले तो दैवी गुणों से महिमान्वित और कृष्णम अनुव्रत, भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्हों का अनुसरण करने वाले परीक्षित महाराज। श्रीमद् भागवत के एक सुंदर श्लोक में कहा गया है, यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचन सर्वैर गुणैस्तत्र समासते सुरा। इस श्लोक में कहा गया है कि जो भगवान की भक्ति में लग जाते हैं उनके अंदर सर्वैर गुणैस्तत्र समासते सुरा। सुरह कहते हैं देवताओं को, और देवताओं में बहुत से गुण पाए जाते हैं, इसलिए वो देवता बनते हैं, उनके अंदर बहुत से गुण हैं, इसलिए वो स्वर्ग लोक पहुंचे हैं। ऐसे इस भौतिक संसार में भी कोई यदि किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहा है, या पाश्चात्य देश में कोई भारतीय है, तो वहां पर उपस्थित होने मात्र से ये लोगों को आभास हो जाता है कि इसने इस देश में रहने की सारी योग्यताओं को पूरी किया है। तो उसी प्रकार से स्वर्ग में जो जाते हैं, केवल स्वर्ग में जाने मात्र से उन्होंने जो कि सुरों के गुण हैं, जैसे कि कोई यदि यहां से अमेरिका जाना चाहे तो उसे अमेरिकी गुण होने चाहिए। और क्या गुण होना चाहिए? अंग्रेजी आनी चाहिए, अंग्रेजी पैसा होना चाहिए। वहां पर यदि 10 रुपए 50 रुपए लेकर दिखाओगे तो अंदर बंद कर देंगे जेल में, और वो जेल में भी वो अमरीकी नियम है तो वो अमरीकी नियम पालन करना पड़ता है जेल में भी वहां के। तो वीजा होना चाहिए, वहां की करेंसी होनी चाहिए, वहां की भाषा आनी चाहिए, वहां पर कैसे गाड़ी चलानी है ये आना चाहिए, चलना कैसे वो आना चाहिए आपको, बहुत से नियम है वहां के। यदि कोई आपके ऊपर कोई कुत्ता भोंक दे तो भारत में तो उसे पत्थर मारकर भगा देते हैं, वहां पर यदि कोई ऐसा कर दे और पत्थर मार दिया किसी कुत्ते को तो फिर पता नहीं कितने साल की जेल होगी, कुत्ते को नहीं व्यक्ति को जिसने पत्थर मारा है। अभी कोई व्यक्ति मुझे बता रहा था कि अभी बंबई में 45 एकड़ भूमि, जो गली के सारे कुत्ते हैं बंबई के, उनके लिए 45 एकड़ भूमि निकाल कर रखी है। और न्यूज था 45 एकर्स लैंड फॉर डॉग्स, स्ट्रे डॉग्स। इस भारत भूमि में ये 45 एकड़ भूमि शुड बी गिवन टू गॉड एंड इट इज गिवन टू डॉग्स। इसलिए फिर सभी आकर बम लगाते हैं और फिर हम लोग भगवान को कोसते हैं कि ये भारत के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और गुणगान किसका हो रहा है, बंबई में ये जो क्रिकेट स्टार हैं इनको हार पहनाया जा रहा है, इनकी आरती उतारी जा रही है। और हम बता रहे थे इनके विषय में, हर एक ये जो क्रिकेट प्लेयर हैं हमारे भारत के, सब गोमांस खाने वाले, और जो गोमांस खाने वाले हैं इनकी आरती उतार रहे हैं हम लोग। जो गोपालक हैं उनकी आरती उतारनी चाहिए, तो जो गोमांस खाने वाले हैं उनकी आरती उतारी जा रही है। तो यदि हम देखें तो यदि जो स्वर्ग में हैं तो वो योग्यता उन्होंने पाई है स्वर्ग में रहने की। तो श्लोक भी कहा गया है कि एक जो भगवान का भक्त बन जाता है उसके अंदर ये सारे जो सुरों के गुण हैं, ये सारे जो देवताओं के गुण हैं, वो अपने आप ही आ जाते हैं, अपने आप ही उसके अंदर मौजूद होते हैं। उसके लिए उसे कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि रूप गोस्वामी पद्यावली के अपने एक श्लोक में कहते हैं कि भगवान की भक्ति में जब से वो लगे हैं तो बता रहे हैं कि जो मुक्ति देवी है जिसके पीछे सभी लोग भाग रहे हैं कि मुक्ति मिल जाए इस भौतिक जंजाल से, तो मुक्ति देवी वो स्वयं इस भक्त के द्वार पर खड़ी है हाथ जोड़े हुए कि मुझे किसी सेवा में लगाओ आपकी। कि सभी लोग जिसके द्वार पर हाथ जोड़े खड़े हैं वो मुक्ति देवी भक्त के द्वार पर हाथ जोड़े खड़ी है। तो अंग्रेजी में इसे कहते हैं बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट का अर्थ है कि असली प्रोडक्ट कुछ और है और वो असली प्रोडक्ट लाने के लिए जो कुछ मिल जाता है उसके साथ उसे कहते हैं बाय प्रोडक्ट। तो उसी प्रकार से ये जो देवताओं के गुण या स्वर्ग की प्राप्ति या ये सारे ऐश्वर्य, ये सब तो केवल बाय प्रोडक्ट है भक्ति प्राप्त हो जाने के पश्चात। और इसके विपरीत कहा गया है कि यदि भक्ति नहीं किसी के अंदर, कुतो महद्गुना मनोरथे ना सती धावतो बही, कि फिर क्या गुण उसके अंदर है, चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो भौतिक दृष्टिकोण से, यदि उस व्यक्ति के अंदर भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति नहीं तो केवल वो मन रूपी रथ के ऊपर धावतो भाग रहा है, भाग रहा है केवल। और कहां भाग रहा है, नर्क की ओर, जो आसुरी संपदा है उसकी तरफ भाग रहा है इस मन रूपी रथ पर आरूढ़ होकर। और इसलिए हम देखते हैं कि आजकल इस रथ पर आरूढ़ होने के लिए बहुत लोग लालायित हैं, जो कि नर्क की तरफ भाग रहा है ये रथ। कौन सा रथ, ये अनियंत्रित मन रूपी रथ जिसके अंदर कृष्ण प्रेम नहीं है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी यहां पर लिखते हैं तात्पर्य में कि भगवान श्री कृष्ण का जो व्यक्ति अनुगमन करता है वो वास्तविक रूप में सर्व विश्व विख्यात व्यक्ति है, जो उनके चरण चिन्हों का अनुगमन करे। कई बार हम सोचते हैं कि भक्ति में भी यदि मुझे बाकी के सारे गुण मिल जाएं भक्ति के नहीं है वो गुण, वो केवल कुछ कला है, स्किल जिसे कहते हैं, कि यदि मैं साधना भक्ति में अच्छा गाना सीख लूं तो कीर्तन में यदि मैं अच्छी से गाऊंगा, उस कला से गाऊंगा तो मेरा गुणगान होगा। या हम सोचते हैं कि भक्ति में जितनी कला हम सीखते हैं उसे हम प्रगति मानते हैं, कि मैं 2 घंटे तक लेक्चर दे सकता हूं और एक भी व्यक्ति सोता नहीं मेरे लेक्चर में, इसलिए मैंने भक्ति में बहुत प्रगति कर ली है। मैं अपने लेक्चर में इतने श्लोक बोल सकता हूं कि ब्रह्मा जी ने भी नहीं बोले होंगे, तो क्योंकि मैं इतने श्लोक बोल सकता हूं इसलिए मैंने भक्ति में प्रगति कर ली। मैं जब कीर्तन करता हूं तो जैसे ही माइक मेरे सामने आता है तो हरि बोल पीछे से लोग बोलते हैं, तो मैं गाना शुरू करूं तो पता नहीं फिर क्या होगा। तो हम सोचते हैं कि ये भक्ति की प्रगति है। जब मैं भगवान का श्रृंगार करता हूं तो ऐसा श्रृंगार करता हूं कि कभी भगवान ने भी स्वयं अपना ऐसा श्रृंगार नहीं किया होगा। तो हमें लगता है कि ये सारे, मैं जब भगवान के लिए भोग बनाता हूं तो ऐसा भोग बनाता हूं कि राधा रानी ने भी कभी नहीं बनाया होगा। और कई बार ऐसा होता है, क्योंकि राधा रानी का गुण क्या है कि राधा रानी वो कभी किसी व्यंजन को रिपीट नहीं किए हैं, तो कई बार हमारा भी कुकिंग ऐसा होता है कि चाहे आलू की सब्जी हो परंतु वो हर बार इतनी अलग बनती है कि हम राधा रानी को भी बीट कर दिए हैं कि एक आलू की सब्जी कभी रिपीट नहीं हुई हमारी। कभी नमक कम तो कभी मसाले कम, कभी आलू कच्चे तो कभी ज्यादा पक गए। हमारी स्थिति ऐसी है। तो हमें लगता है कि ये सारे गुण हैं, अच्छा गा लेना, अच्छा प्रवचन दे लेना, अच्छा श्रृंगार, अच्छा भोजन पका लेना, हमें लगता है कि तिलक, मैं ऐसा तिलक लगा सकता हूं कि कोई व्यक्ति यदि केवल मेरे तिलक को देखे तो 16 माला शुरू कर दे। ऐसा मैं तिलक लगा सकता हूं, और धोती तो मैं ऐसा पहनता हूं कि उसके फोल्ड गिनते गिनते ब्रह्मा जी की आयु खत्म हो जाए। मेरी शिखा तो इतनी सुंदर है कि बड़े बड़े सिनेमा स्टारों की ऐसी जुल्फ नहीं होगी। तो कई बार हमें ये सारे जो बाहरी अंग हैं, हालांकि ये सब भगवान को यदि ठीक भावना से अर्पित किया जाए तो भगवान प्रसन्न होते हैं, परंतु यदि हम कई बार एक संस्था में होने के कारण हमें लगता है कि यही भक्ति की प्रगति है, परंतु हम केवल इन कलाओं को अर्जित करने में अपना जीवन बिता दें तो हम अंत में क्या बनकर रह जाएंगे? कलाकार, कला केंद्र के कलाकार। जैसे कि दिल्ली में बहुत से कला केंद्र हैं, श्रील प्रभुपाद जी इनके विषय में बताया करते थे कि ये सारे जो कला केंद्र है बंगाली भाषा में, वो कला केंद्र का अनुवाद होता है जो पाषंडी होते हैं, मिथ्याचारी, उनको कुछ कहते हैं कला। तो प्रभुपाद जी देख रहे थे सारे कला केंद्र दिल्ली में, तो कहे कि क्या फायदा इन कला केंद्रों का, कि कला केंद्र क्या सिखा रहे हैं। जैसे कई ऐसे कला केंद्र हैं जो हमारे भारत के जितने भी राज्य हैं, कर्नाटक, बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश, ये सब, तो इनके विषय में ये लोग बताते हैं कि कर्नाटक का भोजन कैसा है, तो कर्नाटक के कला केंद्र में वो कर्नाटक का भोजन दिया जाएगा। परंतु वास्तविक जो कला कर्नाटक की, केवल उसका भोजन नहीं या उसकी पोशाक नहीं जो वहां पर, या जो वहां का नृत्य, हम सोचते हैं ये हमारी वैदिक संस्कृति है, ये सारे जो राज्य हैं भारत के, इसमें क्या भोजन पकता है, किस प्रकार की पोशाक लोग पहनते हैं, ये हमारी संस्कृति जानते हैं। परंतु यदि आप कोई भी राज्य में जाओ तो वहां पर भगवान ने अपना अवतार लिया है और वो संस्कृति सिखाने के लिए आए उस राज्य में। भारत में तो आए, परंतु भारत में भी हर राज्य में, यदि कर्नाटक में आप किसी साधारण व्यक्ति को पूछो जो कर्नाटक का नहीं है, मैं केवल उदाहरण ले रहा हूं, कर्नाटक के पीछे मेरा कोई ये नहीं है, तो यदि पूछा जाए कि एक राज्य को लीजिए, इस कर्नाटक को, कि इसकी विशेषता क्या है, हालांकि राजनीतिक तौर से यदि देखा जाए तो आजकल विशेषता ये है कि वहां पर नदी के पीछे द्वंद्व चल रहा है कि ये पानी किसका है। अभी भाई पानी तो भगवान ने बनाया है, वो नदी को तोड़ के आधा आधा करोगे तो जानते हैं कि वहां पर फेमस किस लिए है, वो बैंगलोर, और बैंगलोर किस लिए फेमस है, गार्डन, और किस लिए, आईटी इंडस्ट्री। परंतु वास्तविक जो विख्याति है कर्नाटक की, वो है उडुपी कृष्ण जो कि वहां पर हैं, हमारे सावंत प्रभु जाकर आए थे अभी हाल ही में, इतने वो आकर्षित हो गए एक बिटी जी के आर्टिकल में उडुपी कृष्ण के विषय में पढ़कर कि वो कहे कि मुझे जाना चाहिए। तो उडुपी कृष्ण ये वास्तविक ख्याति है उस राज्य की, ओडिशा में जाओ तो वास्तविक ख्याति है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की, महाराष्ट्र में विठल। तो हर एक राज्य में जाओ तो ख्याति है भगवान की वास्तविक रूप में, परंतु आजकल ये सारे राज्यों, लोग हमारा जो नेशनल एंथम है देश का, वो नेशनल एंथम ये सारे राज्यों का गुणगान किसमें कर रहे हैं, हालांकि ये पूरा जो जनगण मन रचा गया था ये भारत को गुणगान करने के लिए तो रचा ही नहीं गया था सबसे पहले, ये अंग्रेज का वो जॉर्ज फिफ्थ भारत में आने वाला था उसके गुणगान के लिए ये जनगण मन रचा गया था। तो यदि हम ऐसे राज्यों में लें जो भारत की असली ख्याति है, वो असली ख्याति केवल भगवान के अवतारों से हुई है, और ये भगवान के अवतार हमारे जो नेता हैं, जो हमें इन अवतारों के विषय में ज्यादा बताकर सिखाने चाहिए, तो ये लोग सरकार कहती है कि ये तो थे ही नहीं, ये थे ही नहीं, और क्यों, क्योंकि हमारा बाकी विश्व में नाम खराब हो जाएगा यदि हम कहेंगे कि हमारे कोई भगवान थे जिन्होंने सेतु बांधा था और पत्थर पानी पे तैर रहे थे, तो लोग हमारी खिल्ली उड़ाएंगे, कह रहे क्या मनगढ़ंत कहानियों को, कहानियों के ऊपर विश्वास करते हो। तो ये आज भारत की स्थिति हो रही है, जैसे कि कई वर्षों पहले ये बताया गया था कि जन्माष्टमी पर उडुपी कृष्ण के लिए 1 करोड़ का मुकुट भेंट दिया गया। तो वहां पर सब जगह पर पेपरों में ये बात छप रही है कि ये 1 करोड़ का मुकुट ये एक पत्थर की मूर्ति के ऊपर चढ़ाने से क्या फायदा होने वाला है। तो ये सब वाद विवाद चल रहा था कि 1 करोड़ गरीबों को भोजन के लिए क्यों नहीं देते। और परसों ही मुझे एक भक्त पेपर का एक आर्टिकल बता रहे थे कि ये जो क्रिकेट मैच हुआ जिसमें भारत अपने आप को इसमें विजयी मान रहा है कि उसमें विजयी हुआ भारत, तो उसमें हर एक प्लेयर को 1-1 करोड़ रुपया दिया गया, हर एक प्लेयर को 1-1 करोड़। और उस आर्टिकल में लिखा था हर एक प्लेयर को 1-1 करोड़ और एक फ्लैट और 5 साल के लिए एयर इंडिया का टिकट मुफ्त। तो हमने पूछा कि ये कौन से गरीबों के लिए भोजन दिया जा रहा है इस प्रकार से, कि केवल किसी व्यक्ति को एक गेंद लकड़ी से मारने की कला आ गई और उसे 1 करोड़ दिया जा रहा है, कि ये एक लकड़ी से एक गेंद को ऐसे मार सकता है कि पूरे भारत में और कोई भारतीय नहीं मार सकता। तो यदि इस प्रकार का जो पागलपन चल रहा है जिसमें इतने करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे हैं ऐसे व्यक्तियों के ऊपर, जो कि हमारे भारत की वैदिक संस्कृति के अनुसार विपरीत कार्य कर रहे हैं, वो गेंद को एक छड़ी से मारने के लिए गोमांस खा रहे हैं गौ की हत्या करके, और उन्हें 1-1 करोड़ 5-5 साल के लिए सारे फ्री टिकट और घर उनके लिए, गाड़ियां ये सब दी जा रही है। और जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, जब उनके लिए कोई भेंट अर्पित करता है तो 1 करोड़ तो कुछ नहीं है उनके सामने। भगवान तो पूरी सृष्टि के मालिक है, ये 1 करोड़ तो चवन्नी के समान है उनके लिए। तो 1 करोड़ का मुकुट क्या है उनके लिए, 1 करोड़ का मुकुट, जहां पर लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमान, जिस लोक में सहस्त्र लक्ष्मियां उनकी सेवा में लगी हैं, तो उनके लिए ये 1 करोड़ का मुकुट क्या है। और उसके ऊपर प्रश्न उठता है कि ये पत्थर की मूर्ति के ऊपर 1 करोड़। तो यहां पर हम इस श्लोक में देख रहे हैं कि वास्तविक वैदिक संस्कृति क्या है, कि ये हैं सबसे बड़े महाजन जिनका अनुसरण हमें करना है। परीक्षित महाराज जिन्होंने अनुसरण किया, कृष्णम अनुव्रतः, और इनकी तुलना की गई है रंतिदेव और ययाति महाराज इनसे। कि रंतिदेव देखिए इतने बड़े राजा, और उनकी कथा नवम स्कंद में आई है कि रंतिदेव वो वास्तविक रूप में यदि कोई पूछे कि अरे भाई आपका हरे कृष्ण आंदोलन गरीबों के लिए क्या कर रहा है, तो ये रंतिदेव महाराज का एग्जाम्पल देखिए। रंतिदेव महाराज जिन्होंने व्रत लिया 48 दिन का निर्जल उपवास, और उसके पश्चात वो उपवास किस लिए किया था, उपवास किया था केवल जन प्रजा के लिए, स्वयं के लिए नहीं। आजकल तो लोग उपवास करते हैं फिर से क्रिकेट टीम जीत जाए उसके लिए उपवास रखते हैं, और कई बार कई घंटे बाहर उस स्टेडियम के बाहर खड़ा रहना पड़ता है इनको। और हमें एक व्यक्ति बता रहे थे कि ये जो क्रिकेट स्टेडियम में एक बार एंट्री ले लेते हैं तो ये अगर बाहर जाएं शौचालय में या कुछ कार्य करने के लिए तो फिर से उन्हें सीट नहीं मिलता। तो पूरा जितना भी घंटे, एक तो 12-15 घंटे पहले आकर बैठना पड़ता है, और बिल्कुल कुछ पीना नहीं खाना नहीं, क्योंकि एक बार उठकर गए तो वो सीट चला जाएगा। तो एक प्रकार से निर्जल ये लोग उपवास रखते हैं और इतने घंटे पहले आकर बैठकर क्या देखने के लिए, छड़ी से गेंद को मार रहा है कोई, और फिर पागलों जैसे 11 लोग पीछे भाग रहे हैं उसके। अरे फिर मारा क्यों था पहले अगर भागना ही था तो? पहले एक आएगा उस गेंद को भागते हुए उसके ऊपर फेंकेगा और ये मारेगा और बाकी सर 11 बंदरों के जैसे भागेंगे उसके पीछे। इसलिए एक फिलोसोफर ने कहा है इस क्रिकेट गेम के पीछे कि 11 फूल्स आर प्लेइंग अगेंस्ट 11 फूल्स एंड 11,000 अदर फूल्स वॉच दैट। तो रंतिदेव महाराज ये उपवास इसलिए रखे थे ताकि भगवान की जो कृपा है ये उनके द्वारा उनकी प्रजा को मिले, इसलिए उन्होंने उपवास रखा था। और उपवास का नियम है कि उस उपवास को तोड़ना बहुत जरूरी होता है सही समय पर पारण उसका। तो जब पारण का समय आया तो जैसे ही वो अब प्रसाद लेने जाने वाले थे अपने परिवार के साथ, ऐसा नहीं कि अकेले उन्होंने किया, अपने परिवार के साथ। कई बार हम देखते हैं कि परिवार में बाकी सदस्य कह देते हैं कि अरे भाई आप माला कर रहे हैं, आप जा रहे हैं हरे कृष्णा में, आप कीजिए एकादशी और जो भी कुछ करना है। कई स्टूडेंट्स मुझे आकर बोल रहे हैं कि वो जब से भक्ति शुरू किए हैं घर पर जाकर बोलते हैं कि प्याज लहसुन नहीं खाना, तो उनके माता पिता कहते हैं कि बाहर जाकर किधर तुम अपना आश्रम चालू कर ले, इधर जो बनेगा वो खाना पड़ेगा। तो बेचारे वो इतने मुश्किल से नियमों का पालन कर पा रहे हैं। तो यहां पर माता पिता को ये शिक्षा देनी चाहिए कि कैसे भगवान के और निकट जाए। शिक्षा ये दी जा रही है कि कैसे नियमों को तोड़ो घर पे रहते हुए, कि समय ऐसा था कि अजामिल ने नियम तोड़ा जब घर से बाहर गया, परंतु आज स्थिति ऐसी है कि घर के अंदर प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि नियमों को तोड़ो। मैं एक विद्यार्थी से मुंबई में बात कर रहा था, तो विद्यार्थी इतना सुशील व्यक्ति है और 16 माला जप कर रहा है और 4 नियमों का पालन कर रहा है। उसके पिता उसको कहते हैं, अरे मैं जब तुम्हारी उम्र का था तो मैंने सारे भोग भोगे थे, तुम क्या ये नियमों का पालन कर रहा है। ये पिता बोल रहे हैं उसको कि तुम्हारी उम्र में मैंने जीवन के सारे भोग को चख लिया था, और क्या चख लिया था, नरक का टिकट चख लिया था। और यहां पर ये अपने पुत्र को बोल रहा है कि तोड़ो जाकर सब नियम, यही तो तुम्हारी उम्र है नियम तोड़ने की, और आपकी उम्र क्या है भक्ति करने की, तो आप आइए भक्ति करने के लिए। नहीं नहीं, हमारी अभी तक वही उम्र चल रही है नियम तोड़ने की। तो ये शिक्षा दी जा रही है आजकल घरों में कि नियम तोड़ो, मंदिर में जाने से अच्छा बैठकर टीवी देखो। तो यदि घरों में ये सारी शिक्षाएं दी जाएंगी तो फिर माया देवी को कुछ ज्यादा बाहर प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। और फिर जब भारत में इतने सारे इतनी गरीबी दुष्करी ये सब कुछ देख रहे हैं, तो फिर दोष भगवान को नहीं देना चाहिए कि भगवान इस भारत देश में ये सब क्यों करा रहे हैं। जब ये सब भुखमरी और गरीबी दिखती है तो भगवान के ऊपर नजर जाती है, उंगली उनके तरफ जाती है। और जब इस भारत में जो संस्कृति पालन करनी चाहिए जब वो नहीं होती, तब उस समय कोई देखता नहीं। तो महाराज रंतिदेव जब वो अपने परिवार के साथ पारण करने के लिए बैठे, तो जैसे ही अब वो प्रसाद ग्रहण करने वाले थे तो एक ब्राह्मण वहां पर उपस्थित हुए, और ब्राह्मण ने पूछा कि मैं भूखा हूं, कुछ देंगे, कुछ है भिक्षा? आजकल यदि मधुकरी के लिए किसी के घर में चले जाओ, यहां पर देखिए महाराज रंती देव ने जो कुछ ब्राह्मण को चाहिए था अपने प्लेट से निकाल कर दिया। ऐसा नहीं कि कल का बचा कुचा फ्रिज से निकाल कर कुछ दे दिया, अपने वहां पर जो खुद राजा उनके प्लेट का जो भी कुछ था वो ब्राह्मण को दिया। आजकल यदि किसी के घर पे जाओ तो भिक्षा तो दूर की बात है, घर में घुस भी नहीं सकते आप, बाहर साइन लगाया होता है कुत्तों से सावधान, कि कुत्ते के लिए सब कुछ मिल रहा है। परंतु यदि कोई मधुकरी के लिए कोई साधु यदि किसी के घर पे जाए तो स्वागत करने के लिए कुत्ता है सबसे पहले। एक बार एक साधु महात्मा वो किसी के घर पे गए भिक्षा मांगने के लिए, तो अंदर उसी समय पति पत्नी की लड़ाई हुई थी, तो यहां पर बाहर साधु महात्मा मांग रहे हैं भिक्षा अंदेही, और यहां पर अंदर युद्ध भूमि पे रणभूमि पे युद्ध मच रहा था अंदर। तो उस समय जब ऐसा देखा जाता है कि उस समय यदि कोई आ जाए वो भी कोई भिखारी, तो वो ऐसे दुत्कार के मानो कि जैसे हाथ में कोई तोप लेकर उसे उड़ाने के लिए आया ऐसे। तो पत्नी बाहर आई और देखा कि आ गए भीख मांगने सुबह सुबह, रुको मैं तुम्हें देती हूं कुछ। तो अंदर जाके चूल्हे में से जो भस्म थी ऐश वो लाकर उसके झोली में फेंक दिया। तो साधु महात्मा धन्यवाद करने लगे कि मैं फिर से आऊंगा कल। तो उनको पूछा गया कि अरे ये दुत्कार के भेज दिया आपको बाहर, और केवल कुछ राख डाली है, केवल कुछ ऐश डाली है आपके इसमें। तो साधु महात्मा कहते हैं आज ऐश है कल कैश होगा। अर्थ ये है कि उन्होंने कहा कि कम से कम डालने की तो इनके अंदर कुछ वृत्ति है, चाहे राख ही क्यों ना डाली, परंतु कुछ तो वृत्ति है कुछ डालने की। तो धीरे धीरे ये राख से और कुछ ऊपर ये डालने की प्रवृत्ति हो जाएगी। तो महाराज रंती देव ने जब ब्राह्मण आए तो सपने अपने प्लेट से निकालकर उनको दिया, और फिर जितना कुछ आधा बचा था अब जब वो ग्रहण करने जाने वाले थे तो उसी समय वो ब्राह्मण तो चले गए और उनके पीछे आए एक शूद्र। तो शूद्र, अब ठीक है कि ब्राह्मण को कोई दे देता है, परंतु यहां पर एक शूद्र आ गया। तो सबसे पहले तो श्रीमद् भागवत में लिखा गया है कि महाराज रंती देव इन्होंने ब्राह्मण को इसलिए दिया कि वो ब्राह्मण को भगवान से संबंधित जान रहे थे, इसलिए ब्राह्मण को दिया उन्होंने कि भगवान इस ब्राह्मण के रूप में आए हैं। तो भगवान से संबंधित ब्राह्मण को जानते हुए उन्होंने ब्राह्मण को दिया। परंतु फिर प्रश्न पूछा गया कि शूद्र को अब क्यों दिया, जब शूद्र आकर मांग रहा है तो शूद्र को क्यों दिया। तो तात्पर्य में लिखा गया है कि शूद्र को महाराज रंती देव इस धारणा में दिए पंडित समदर्शिन विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव शपाके च पंडित समदर्शिन। ये जो श्लोक है ये श्लोक की पुष्टि रंती देव महाराज ने पूर्ण प्रकार से की है कि जब वो शूद्र भी आया तो उस शूद्र को भी ब्राह्मण के समान ही मानते हुए, क्योंकि उस शूद्र के अंदर भी भगवान का ही अंश है। और श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि कई बार कलयुग में इस जो धारणा है वृत्ति है इसको लेकर लोग जो दरिद्र हैं उसे नारायण बोल रहे हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं दैट दिस दरिद्र नारायण फिलोसफी इज बोगस, कि यदि कोई ये देखे कि अरे महाराज रंती देव एक ब्राह्मण और शूद्र को भगवान से संबंधित मान रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि वो नारायण हो गए। अरे एक तो नारायण जो कि लक्ष्मी के पति हैं, सहस्त्र लक्ष्मियों के पति हैं, और उन्हें कहते हैं दरिद्र नारायण। तो उन्होंने शूद्र को भी उसी समान से देखा, उसी समानता से देखा कि वो संबंधित हैं भगवान से। और उसके पश्चात जैसे ही शूद्र को उन्होंने कुछ भाग दिया अपने ही थाली से, तो उसके पश्चात एक व्यक्ति कुत्तों के साथ, अपने कुत्तों के साथ वो व्यक्ति आ गया और वो कहने लगा महाराज रंतिदेव से कि मेरे जो कुत्ते हैं बहुत भूखे हैं और मैं भी भूखा हूं। तो यहां पर देखिए महाराज रंतिदेव उस व्यक्ति को और उसके कुत्तों को जो कुछ बचा हुआ था सब कुछ दे दिया, पूरी थाली खाली। अब ये महाराज रंतिदेव के गुण। यहां पर तो कुत्तों के वजह से किसी को अंदर घुसने नहीं दे रहे, और यहां महाराज रंतिदेव इस व्यक्ति, क्योंकि आतिथ्य का पालन कर रहे थे, अतिथि देवो भव, जैसे कि हम अपने एक प्रवचन में बता रहे थे कि पिछले युगों में लोग अपने घरों के सामने लिखते थे क्या, अतिथि देवो भव। फिर उसके अगले युग में वो अतिथि देवो भव से केवल शुभ लाभ इतना हो गया, और शुभ लाभ के पश्चात वो शुभ भी चला गया और कुछ लाभ भी नहीं मिलता तो केवल स्वागत, वेलकम, वो भी नीचे कारपेट पे लिख देते हैं वेलकम, बाहर जो डोरमैट होता है उसमें वेलकम। और आजकल कलयुग में तो वो सब भी कुछ नहीं, कुत्तों से सावधान ये सामने लिखा रहता है। तो यहां पर महाराज रंतिदेव अपने किसी अतिथि का स्वागत इस प्रकार से कर रहे हैं कि वो अतिथि कुत्ते की योनि में है। तो कई बार लोग ये सोचते हैं कि अरे महाराज रंतिदेव देखो कुत्तों को खिला रहे हैं, तो फिर ये जो पाश्चात्य देश में लोग कुत्तों को खिलाते हैं तो हम लोग महाराज रंतिदेव का पालन कर रहे हैं। एक बार एक व्यक्ति ये आर्ग्यूमेंट लेकर आए थे कि हम कुत्तों की देखभाल कर रहे हैं महाराज रंतिदेव को देखते हुए। महाराज रंतिदेव ने दिया, चैतन्य महाप्रभु ने कुत्तों का उद्धार किया, शिवानंद सेन वो एक कुत्ते को अपनी यात्रा में रखे थे, तो हम केवल उतना ही देख रहे हैं। महाराज रंतिदेव ने कुत्तों को देने से पहले बहुत कुछ किया, 48 दिन का फास्टिंग भी किया, और उसके बाद ब्राह्मण को, शूद्र को, उस व्यक्ति को, और उसके पश्चात एक चांडाल आया, केवल पानी का ग्लास बाकी रह गया। तो ये उन्होंने जाना कि केवल थोड़ा पानी पी लेने से भी पारण हो जाता है, तो पानी पीने के लिए जितना भी पानी बचा था वो जब ग्रहण करने जाने वाले थे तो एक चंडाल आ गया। चंडाल जो कि शूद्र से भी नीचे, कुत्तों का पालन करने वालों से भी नीचे, कुत्ता जो खाता है उसे कहते चंडाल, वो आया और आकर सीधा उसने क्या पूछा, प्यास लगी है। सब प्लान कर आए थे लोग। अभी कई बार हम लोग जब भूखे, प्रसाद की प्लेट सामने रहती है और फोन भी बज जाए तो उसको सबसे पहले तो साइलेंट मोड में रख देते हैं कि फोन नहीं बजना चाहिए और कोई डिस्टर्ब करने आए नहीं। कई बार यदि कोई विशेष प्रसाद होता है तो ऐसी जगह पर जाके बैठते हैं कि टेंपल कमांडर या जीबीसी भी ढूंढने जाएं तो नहीं मिल पाएंगे वो। कोई ब्राह्मण या और इत्यादि तो ढूंढना दूर की बात है। और कई बार यदि भूख लगी है और द्वादशी का दिन है और हमारा फेवरेट व्यंजन है सामने, और कोई उसी समय, प्रभु जी माला कैसी चल रही है आजकल आपकी, सामने अब खाने जाने वाले हैं और कोई व्यक्ति आके पूछे माला कैसी चल रही है आपकी, हो गई आज की माला, अभी बाद में बात करना। तो जैसे कि रूप गोस्वामी कहते हैं कि हे कृष्ण, आपका ये जो नाम है कृष्ण, ये जो दो अक्षर हैं कृष्ण, जब मैं इनका उच्चारण करने जाता हूं तो मुझे ये केवल एक जिह्वा और दो कान कम पड़ रहे हैं, कुछ नहीं है ये। वो बोल रहे हैं रूप गोस्वामी कि अनगिनत लाखों अरबों मेरी जिह्वा होनी चाहिए और उतने ही कान होने चाहिए, तब जाकर कुछ आस्वादन होगा। तो कई बार हमारी भी स्थिति ऐसी होती है जब प्रसाद सामने आता है तो हम भी प्रार्थना करते हैं रूप गोस्वामी जैसे कि भगवान केवल एक जिह्वा क्यों और एक पेट क्यों। और उस समय यदि कोई हमसे आकर चर्चा करना शुरू करे तो ये कान, दो कान ज्यादा लगते हैं, भगवान ने कान क्यों बनाए। कई बार हम देखते हैं कि मंदिर में हम वो प्रभुपाद लीलामृत पढ़ते हैं जब प्रसाद के समय, तो बहुत कम व्यक्ति को याद होता है कि आज क्या पढ़ा था प्रभुपाद लीलामृत में। कई बार ऐसा देखा गया था कि जो व्यक्ति पढ़ रहा है उसने भी अपनी प्लेट उधर ही बनाई है तो पढ़ रहा है। श्रील प्रभुपाद जी जब कलकत्ता के राधा गोविंद मंदिर में जाते थे, हाँ डालो डालो, तो केवल नजर है कि महाप्रसाद जो घूम घूम के जा रहा है वो सब प्लेट में आ रहा है कि नहीं। और प्रभुपाद जी ने रात रात भर जग कर इन किताबों का अनुवाद किया। और जैसे ही कई बार ऐसी स्थिति होती है कि एक बजे प्रसाद शुरू होता है हमारे उधर मंदिर में, और अगर टाइमिंग है 1:25 तक सबका फर्स्ट राउंड हो जाता है, तो जैसे ही वो फर्स्ट राउंड हो गया तो जो रीडर है उसका एपेटाइट इतना बढ़ गया है अब तक। तो कई बार ऐसा होता है कि फीस्ट होती है तो लोग धीरे धीरे खाते हैं और ज्यादा आइटम होते हैं तो धीरे धीरे आइटम आते हैं, तो बीच बीच में एक पैराग्राफ खत्म होते ही देखते हैं जय जय राधे बोल रहे हैं कि नहीं, और सभी लोग कई बार चिढ़ाने के लिए खाते खाते बोलो बोलो पढ़ो पढ़ो और पढ़ो। एक बार एक फीस्ट में वो गरम जलेबी बांट रहे थे, तो गरम जलेबी जो है वो गरम गरम सबको बांटी जा रही थी, जो हमारे रीडर थे वो जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं और बार बार बीच में उठकर देख रहे हैं कि जय जय राधे बोलना चाहिए शायद अब सबको, तो सभी गरम गरम जलेबी खाते हुए नहीं नहीं अभी और आने वाली है पढ़ते रहो पढ़ते रहो। तो उनकी नजर अंदर थी कि और ये पढ़ने के बाद सेकंड राउंड के लिए है कि नहीं। तो कई बार हमारी स्थिति प्रसाद लेते समय ऐसी होती है, परंतु यहां पर देखिए महाराज रंतिदेव ये सारे जो ब्राह्मण शूद्र ये चांडाल और कुत्तों को लेकर जो व्यक्ति आया ये सब देवता थे और ये परीक्षा ले रहे थे महाराज रंतिदेव। और ऐसा नहीं कि महाराज रंतिदेव को पता था कि उनकी परीक्षा ली जा रही है। कई बार जब हमको पता लगता है कि मेरी परीक्षा ली जा रही है तो हम थोड़ा सीरियस का दिखावा करते हैं, सीरियस बनने का। ऐसा नहीं कि महाराज रंतिदेव को पता था। कई बार जब देखा जाता है कि उपवास का दिन है, हमने देखा उपवास के दिन जो राजभोग का जो नॉन एकादशी है आइटम उसको बहुत प्रेम से दिलदार होकर लोग बांटते हैं। हमारे मंदिर में देख रहे थे हम कि मैंने देखा कि एक हमारे भक्त वो महाप्रसाद ऐसे भर भर कर वो सर्वेंट्स को बांट रहे थे। तो फिर मैंने पूछा कि आज महाप्रसाद इतना दिलदार होकर ये व्यक्ति कैसे बांट। उन्होंने कहा आज एकादशी ना, वैसे भी नहीं मिलने वाला है। तो कई बार जब हमें पता लग जाता है, जैसे हमारे एक डिवोटी बता रहे थे कि जब वो नए नए आते थे संडे फीस्ट के लिए तो उनको हर समय प्रसाद सर्विंग में लगा देते थे वो टेबल पर, और वो आते थे केवल संडे फीस्ट खाने के लिए और वहां पर सर्विंग के लिए लगा देते थे। और कई बार उनके फेवरेट कुछ बनता था, उनका वो हलवा और उनकी फेवरेट वो सब्जी थी बहुत बार वो बनती थी। तो वो बोल रहे थे कि जब वो सर्विंग करते थे, जब देखते थे कि बर्तन खाली होते जा रहा है अब और इतना लंबा लाइन है, तो जो सब्जी है चटनी की जैसे बांटना शुरू करते थे। तो इतना इतना सा बांटते, तो लोग देखते रहते कि थोड़ा थोड़ा और डालो, तो बोले नहीं कम है। तो फिर जब, और सब्जी कम नहीं होती थी, अंदर सब्जी रहती थी, क्योंकि यहां पर कम हो रही तो उनको लगता था कि अंदर सब्जी नहीं बचेगी उनके लिए, तो इसलिए वो सब्जी को चटनी की जैसे बांटना शुरू करते थे और चटनी को सब्जी जैसे, क्योंकि ज्यादा चटनी खा लेंगे तो फिर सब्जी बच जाएगी। तो फिर उन भक्त को बताया गया, ठीक है आपकी प्लेट हम आपके सामने पहले बनाकर रखते हैं। तो पहले उनकी प्लेट भर भर कर सब आइटम्स बना के वो टेबल के नीचे, आपकी प्लेट है, नाम लिख दिया, हाँ आओ। फिर भर भर के तो उन्होंने, अरे प्रभु जी इतना नहीं चाहिए, नहीं खाओ, महाप्रसादे गोविंदे, महाप्रसादे ज्यादा खाना चाहिए। तो वो लोग पूछते थे, लेकिन प्रभु जी आपके लिए नहीं बचेगा, नहीं नहीं वैष्णव सेवा, वैष्णव की सेवा होनी चाहिए ना पहले। तो कई बार जो देखते थे उनको पता लग जाता था कि नीचे प्लेट बन चुकी है, तो वैष्णव सेवा अच्छी से हो रही है। तो महाराज रंतिदेव को पता नहीं था कि ये सारे देवता परीक्षा के लिए इस प्रकार से अपना रूप बदल कर आए थे। तो महाराज रंतिदेव जब वो अंतिम जो पानी बच गया था उनके पारण के लिए, वो भी जब उन्होंने दे दिया, तो सब ये देवता फिर वहां पर प्रकट हुए अपने निज रूप में, और वो महाराज रंतिदेव को बोलने लगे कि हमें भेजा गया था आपकी परीक्षा करने के लिए, और आप इतने उत्तीर्ण हुए हैं परीक्षा में कि हम क्या कहें आपके विषय में, तो हम आपको वरदान देने आए हैं। आपको क्या वरदान चाहिए? स्वर्ग का भोग चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, निवास स्थान स्वर्ग में, आपको अष्ट सिद्धि चाहिए, क्या चाहिए आपको? तो महाराज रंतिदेव देखिए एक बहुत ही सुंदर श्लोक में वो बोलते हैं, न कामये हम गतिमीश्वरात् पराम अष्टर्धि युक्तम अपुनर्भवम वा आर्तिम प्रपद्ये खिल देह भाजाम अंतस्थितो ये न भवन्त्य दुख। वो कहते हैं न कामये हम गतिम ईश्वरात् पराम, कि मेरी कोई कामना पहले से भी नहीं थी और अब भी नहीं है, कि ये जो ईश्वर गतिम आप लोगों को मिली है, जो आप मुझे देना चाहते हैं, देवताओं की गति, अर्थ है स्वर्ग लोक, ये कुछ नहीं चाहिए मुझे। न कामये हम गतिम ईश्वरात् पराम, ये कुछ नहीं चाहिए। अष्ट अर्ध सिद्धि, ये सब भी नहीं चाहिए, अष्ट सिद्धि भी नहीं चाहिए। अपुनर्भवम वा, कि मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, ये भी रिजेक्ट कर दिया महाराज रंतिदेव ने, कि मैं स्वीकार करूंगा इस भौतिक संसार में फिर से जन्म लेना, फिर से बुढ़ापा, मृत्यु, बीमारी, ये सब स्वीकृत है मुझे। और क्या एकमात्र उनकी कामना उन्होंने बताई, आर्तिम प्रपद्ये, कि जो बद्ध जीवात्मा भगवान को भूले हुए इस संसार में, इस शरीर में जकड़ रहे हैं अपने आप को, तो खिल देह भाजाम अंतस्थितो, मैं उनके बीच में रहना चाहता हूं, ऐसे बद्ध जीवात्माओं के बीच में मैं रहना चाहता हूं जो कि भगवान को भूले हैं, भक्ति से इतने दूर हैं, और उनके दुख का निवारण करने के लिए मैं जन्म लेना चाहता हूं, जन्म जन्मांतर मैं पैदा होकर इनके दुखों के निवारण के लिए मैं इस संसार में रहना चाहता हूं, ये एकमात्र कामना महाराज रंतिदेव की। तो इसीलिए परीक्षित महाराज की तुलना ऐसे महाराज रंतिदेव से की गई है, और ऐसा नहीं कि तुलना की है, अब वो पैदा हुए हैं तो पैदा होते ही बच्चों की तुलना बहुत से व्यक्तियों से की जाती है, अरे देखो दिखने में कमल जैसा दिखता है, पैदा हुआ है कमल जैसा, बड़ा होने के बाद पता नहीं वो कमल केवल उसमें न निकल क निकल जाएगा, केवल मल रह जाएगा फिर। तो बचपन में तुलना की जाती है कमल से, परंतु आगे चलकर पता नहीं वो वृत्ति और कर्मों के अनुसार व्यक्ति का नाम बदलना पड़ता होगा। परंतु यहां पर परीक्षित महाराज की बचपन से तुलना इनसे की गई और आगे चल के उन्होंने सिद्ध किया, उन्होंने सिद्ध किया कि वो किस प्रकार से ऐसे राजाओं के गुण लिए थे बचपन से। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी विशेष तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान का संग परीक्षित महाराज को क्यों इतना मिला, कि गर्भ में परीक्षित महाराज को भगवान ने संग दिया और परीक्षित महाराज का उद्धार सुखदेव गोस्वामी और भागवत के रूप में भगवान प्रकट हुए परीक्षित महाराज का उद्धार करने के लिए। तो उनके जन्म और उन्होंने जब अपना शरीर त्यागा, दोनों समय परीक्षित महाराज ने अपने उदाहरण से दिखाया कि भगवान का संग सानिध्य उन्हें क्यों मिला, क्योंकि उन्होंने भगवान के आदेशों का पालन किया। तो ये वास्तविक संग है अपने गुरु का और भगवान के भक्त भगवान का। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान का संग या भगवान के प्रतिनिधि का संग लेना है तो उनकी वाणी का पालन करने से उनका संग मिलता है। केवल उनकी वपु के सानिध्य में रहना ये उनका संग नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी एक बार, ये 1974 या 74 की बात है, श्रील प्रभुपाद जी को उनके एक शिष्य आकर कहे कि प्रभुपाद जी आप अब इस्कॉन इतना फैला दिए हैं, इतने सारे आपके शिष्य हुए हैं, तो बहुत से शिष्यों की शिकायत है कि वो आपका पर्सनल एसोसिएशन नहीं ले पा रहे, तो वो आपका पर्सनल एसोसिएशन लेना चाहते हैं। और प्रभुपाद ने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा कि उनको लग रहा है कि उनका आपके साथ कुछ गहरा डीपर रिलेशनशिप नहीं डेवलप हो रहा। तो प्रभुपाद ने कहा फर्स्ट लेट देम फॉलो द फोर रेगुलेटर प्रिंसिपल्स एंड चैंट 16 राउंड्स, देन देयर इज एनी क्वेश्चन ऑफ डीपर रिलेशनशिप विद स्पिरिचुअल मास्टर। कि सबसे पहले चार नियम और 16 माला करने के लिए कहो, उसके पश्चात कोई प्रश्न है स्पिरिचुअल मास्टर या गुरु के साथ कुछ गहरा रिलेशनशिप स्थापित होना। तो ये वाक्य सुन के आगे किसी का कोई प्रश्न नहीं था। तो प्रभुपाद जी यही बता रहे थे कि वास्तविक गुरु का संग क्या है, उनके वाणी का संग, उनकी वाणी उनके आदेशों का जब हम पालन करते हैं तो उनके आदेशों का पालन यही उनका वास्तविक संग है। और इसलिए परीक्षित महाराज, क्योंकि कृष्ण अनुव्रत, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के आदेशों का पालन किया, जैसे कि अर्जुन ने, परीक्षित महाराज के जो दादा अर्जुन, नष्टमोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को गीता के अंत में क्या कहा, ये नहीं कि आपने जो गीता सुनाई बहुत अच्छा लेक्चर था आपका, लेक्चर बहुत अच्छा देते हैं भगवान आप, एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा दिया आपने, बोलने की शैली बहुत अच्छी आपकी और एकदम स्टाइल से बोलते हैं आप, और आपका बोलने का वॉल्यूम भी अच्छा था। अर्जुन ये सब नहीं बोल रहे थे भगवान कृष्ण को। अर्जुन ने क्या कहा भगवान श्री कृष्ण को, नष्ट मोह, कि ये जो वाणी आपके सुनने, मैंने जो सुनी है उसके पश्चात जो मेरा मोह है वो नष्ट हुआ है हे भगवान। सबसे पहले स्मृतिर लब्ध्वा, कि जो विस्मृति हुई थी मेरी, वो पुनः स्मृति आ गई है, स्मृतिर लब्ध्वा त्वत् प्रसादात् मयाच्युत, कि आपका ये जो प्रसाद, आपकी वाणी का प्रसाद, थोड़ा इसको, जो आपकी वाणी का प्रसाद आपने मुझे दिया है, ये वाणी का प्रसाद प्राप्त करने से अब मुझे कोई संदेह नहीं, स्थितोस्मि गत संदेह, कोई संदेह नहीं रह गया कि मुझे क्या करना है, और क्या करना है मुझे, करिष्ये वचनम तव, आप जो चाहेंगे भगवान वो मैं करूंगा। तो कई बार हम भक्ति में कुछ सुख की अनुभूति कब मानते हैं, जब हम जो चाहते हैं हम करते हैं तो हमें लगता है कि भगवान मुझे सुख की अनुभूति दे रहे हैं, वो वास्तविक भगवान के भक्ति का आनंद नहीं है। भगवान की भक्ति का आनंद क्या है कि जो भगवान चाहे जब वो हम करें, उसमें जब आनंद मिले तो प्रगति हो रही। मुझे गाना अच्छा लगता है इसलिए मुझे बहुत आनंद, घंटों घंटों मैं गा सकता हूं, क्यों, क्योंकि मुझे गाना अच्छा लगता है, परंतु क्या भगवान उससे प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं वो अलग प्रश्न है, परंतु मैं प्रसन्न हो रहा हूं क्योंकि मुझे गाना अच्छा लगता है, और इस्कॉन में बहुत सुविधाएं हैं, अपॉर्चुनिटी है गाने के लिए, मुझे बोलना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए एक बार जब मैं व्यासासन पे बैठ जाता हूं तो कोई उठ नहीं सकता क्योंकि उनको बैठना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं खत्म करूंगा तभी प्रसाद मिलेगा। तो मुझे बोलना अच्छा लगता है, मुझे गाना अच्छा लगता है, इसलिए मैं भक्ति में बहुत आनंदित हूं। वो आनंद नहीं है, आनंद किस में आना चाहिए, भगवान प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं, और भगवान की प्रसन्नता कैसे जान सकते हैं, जो भगवान के प्रतिनिधि हैं वो प्रसन्न हो रहे हैं तो भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। इसलिए अर्जुन ने भगवान के आदेशों का पालन किया, करिष्ये वचनम तव, इसीलिए परीक्षित महाराज भी, जो कि उनके ही वंश में उनके पोते, कृष्णम अनुव्रतः, यहां पर इस श्लोक में इनके विषय में कहा गया। इसलिए परीक्षित महाराज के अंदर ये सारे गुण पाए गए, परीक्षित महाराज को भगवान का सानिध्य इतना मिला, स्वयं भगवान ने उनकी रक्षा की, इसलिए उनको एक नाम मिला विष्णुरात, जो भगवान विष्णु ने रक्षा की परीक्षित महाराज की, और वो इसलिए क्योंकि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के, उनके प्रतिनिधियों सुखदेव गोस्वामी के आदेशों का पालन किया। तो यदि हमें भी भगवान श्री कृष्ण और गुरुदेव की कृपा यदि हमें भी चाहिए या उनका सानिध्य चाहिए, तो एकमात्र इस श्लोक के अनुसार क्या करना है, उनकी वाणी का पालन करना है। और उनकी वाणी क्या है कि भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना, क्रिकेट मैच नहीं देखना, ये गुरु का आदेश नहीं है। यदि गुरु का आदेश पालन करना है तो गुरु कहते हैं कि भगवान की सेवा में लगो और श्रील प्रभुपाद जी की सेवा में लगो, तो वो वास्तविक गुरु के आदेश का पालन है, और यही परीक्षित महाराज हमें इस श्लोक से सिखा रहे हैं। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न?
हरे कृष्णा। जो अपना क्रिकेटर और स्टार, राजनीतिक जो नेता वगैरह, इनको हम भक्त क्यों नहीं बनावाते?
इनको क्या,
भक्त क्यों नहीं बनावा,
भक्त क्यों नहीं बना पाते? सबसे पहले तो इनको देखना बंद करो और इनको प्रचार करना शुरू करना चाहिए हमें। जब हम ही टीवी खोलकर इनका गुणगान कर रहे हैं, जब हम ही इनकी आरती उतार रहे हैं, तो फिर इनको ये बताना कि तुम लोग ये जो कर रहे हो ये माया है, तो वो लोग बोलेंगे फिर तुम हमारी माया को क्यों देख रहे हो, वो लोग ही पूछेंगे। तो सबसे पहले हमें इनको देखना बंद करना है, ये प्रचार करना तो दूसरी बात है। इनको देखना बंद करेंगे तो सबसे पहले हम अपने आप को प्रचार करेंगे कि मैं भक्ति में हूं, और भक्ति में होने की वजह से मुझे सबसे पहले जो प्रभुपाद ने नियम दिए हैं वो पालन कर रहा हूं कि नहीं मैं। और फिर यदि हम इतने पक्के हैं तो जाकर इनको बोल सकते हैं कि आप जो ये गेंद मार रहे हैं अपने एक छड़ी से, इसको छोड़कर अपने हाथ में माला लीजिए। तो फिर आगे चलकर वो सेकंड स्टेप है, सबसे पहले हमें अपने आप को बचाना है कि हम इनसे बचकर दूर रहें, इस माया में हम नहीं गिरें। तो हां, हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर सबको प्रचार करें ताकि सब लोग जो विशेष रूप से इस भारत में जन्मे हैं, जो भारत की संस्कृति है उसको वो लोग बढ़ाएं। भारत की संस्कृति ये क्रिकेट नहीं है, भारत की संस्कृति परीक्षित महाराज जैसे उदाहरण है, ये भारत की संस्कृति है। हाँ, तो आप आइए प्रचार करने के लिए। नेक्स्ट टाइम जब क्रिकेट मैच होगा तो हम जाएंगे। हमारे हम लोग जब लंदन में थे तो वहां पर क्रिकेट टीम, अपना इंडिया का क्रिकेट टीम वहां पर आया हुआ था, तो हमारे एक वहां के डिवोटी बोले, प्रभु जी चलना है देखने के लिए, इंडियन टीम इधर लंदन में खेल रहा है। हमने कहा ये कौन से प्रभुपाद की पुस्तक में लिखा है? तो नहीं नहीं हम लोग पुस्तक वितरित करेंगे वहां जाके, स्टेडियम में लोगों को बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो भक्ति का अंग हो गया ना। और मैंने कहा और फिर थोड़ा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते करते थोड़ा देख भी लेंगे, पता लगना चाहिए ना कि किसको बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो हमारे इंद्रिय भोग के लिए हर प्रकार का जस्टिफिकेशन दे देते हैं कि उसको हम महाराज रंती देव ने जैसे सबको भगवान से संबंधित देखा, हम भी उस स्थिति में पहुंचना चाहते हैं कि क्रिकेट को भी महाराज रंती देव की तरह भगवान से संबंधित। इसलिए हमारे एक भक्त बता रहे थे प्रवचन में कि कई बार जब भगवान श्री कृष्ण की कथा चल रही है तो लोगों को नींद आती है, परंतु जैसे ही उन्होंने देखा कि लोग सो रहे थे तो कृष्ण लीला को उन्होंने क्रिकेट का उदाहरण दे दिया कि कृष्ण लीला क्रिकेट के समान है और कृष्ण फास्ट बॉलर हैं। अरे सभी आंख खोलकर, कृष्ण फास्ट बॉलर है, कौन से बॉलर हो सकते हैं? तो उन्होंने कहा कृष्ण फास्ट बॉलर हैं, जैसे सभी जो राक्षस आए उनको किस प्रकार से बहुत जल्दी मार दिया उन्होंने, और बलराम जी जो हैं वो स्पिन बॉलर है, वो धेनुकासुर को गुगली की तरह घुमा के मारा। तो जब ये उदाहरण दे रहे थे, और कंस जो है वो अंपायर है, एक एक राक्षस का वध कर रहे तो कंस बोल रहा था वन मोर आउट। तो जब ये उदाहरण दिया गया तो सभी लोग वो बोले कि आपके प्रवचन में वो सबसे अच्छा उदाहरण प्रभु जी वही था। तो हमारी स्थिति है कि हम कृष्ण लीला को क्रिकेट से संबंधित कर रहे हैं। और कई बार हम सोचते हैं कि यदि हम क्रिकेट को कृष्ण से संबंधित कर दें तो हम प्रगति कर रहे हैं। तो जान लेना चाहिए कि हम कहां पर अपनी आसक्ति डाल रहे हैं।
तो और श्री प्रभुपाद जी भी कहते हैं प्रभु जी उनके परपट्स में कि स्पिरिचुअल लाइफ में सक्सेस यही है कि आप गुरु के आदेशों का पालन करें, लेकिन ये जो आदेशों का पालन है प्रभु, हम देखते हैं कि हमारे खुद की कंडीशनिंग के वजह से हम उसको नहीं पालन कर पाते। सबसे पहली बात है कि उसको दृढ़ता से कैसे पालन करें, और अगर उसका साइन क्या, अगर हम पालन कर रहे हैं तो क्या साइन है कि हम सच्ची में दृढ़ता से और इंटेंसली उसका फॉलो कर रहे हैं।
सबसे पहले तो हमें ये हर समय इस भावना में रहना चाहिए कि मैं जो कुछ सोच रहा हूं, जो कुछ बोलता हूं, जो कुछ कर रहा हूं, यदि आप इस भावना में हैं कि मेरे गुरु मेरे बगल में सब देख रहे हैं, मैं अभी क्या बोल रहा हूं, क्या कर रहा हूं, क्या सोच रहा हूं, गुरु मेरे बगल में, मान लो कि सुबह के समय आप जप करने बैठे हो और आपके सामने श्रील प्रभुपाद बैठे हैं, तो वो जप आपका कैसे रहेगा श्रील प्रभुपाद जी के सामने? यदि आप प्रवचन दे रहे हो, प्रभुपाद जी सुन रहे हैं प्रवचन, तो आप प्रवचन कैसे दोगे? यदि आप भगवान की कुछ सेवा कर रहे हो तो प्रभुपाद आपके बगल में है, आपके गुरु बगल में है। तो यदि ये धारणा में हर समय हम रहेंगे, हमारी धारणा क्या हो जाती है, अरे कौन देख रहा है, कौन मुझे देख रहा है, गुरु कहीं पर हैं, मैं यहां पर हूं, भक्त भी कहीं पर हैं, मैं अकेला हूं, तो कौन देख रहा है मेरे कर्मों को, कौन सुन रहा है मेरे वचनों को? तो जब इस धारणा में हम रहते हैं तो जो नियम हैं वो धीरे धीरे टूटने लगते हैं। परंतु यदि हम इस भावना में हर समय रहें कि चैत्य गुरु जिन्होंने मुझे ये बाह्य गुरु दिए हैं, वो चैत्य गुरु सब रिपोर्ट दे रहे हैं बाह्य गुरु को, और चैत्य गुरु सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं कि हम क्या देखते हैं, हम क्या बोलते हैं और हम क्या सोच रहे हैं, हमारा मन, हमारे वचन और हमारे कर्म, ये सब का रिकॉर्ड चैत्य गुरु बना के रखे हैं परमात्मा, और वो उनका डायरेक्ट कांटेक्ट है बाह्य गुरु से। तो ये नहीं समझना चाहिए कि मैंने दीक्षा ले ली है और ये जो दीक्षा जिनसे ली है ये गुरु को क्या पता लगता है कि मैं अब क्या कर रहा हूं, नहीं, वो ये सोचना नारकीय बुद्धि है शास्त्रों के अनुसार। तो यदि हम इस धारणा में रहेंगे तो हर क्षण जो आदेश मिले हैं उसका हम ठीक से पालन कर पाएंगे। और क्या था प्रश्न आपका?
अगर हम इंटेंसिव फॉलो कर रहे हैं, अगर वाणी को हम जेन्युइनली पालन करें, तो उसका साइन क्या होना चाहिए, उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए?
उसके लक्षण यही है कि हमें भगवान के श्रवण कीर्तन में रुचि आएगी। सबसे पहला लक्षण यह है, रुचि आना दूसरा लक्षण है। सबसे पहला लक्षण है नींद नहीं आएगी। दूसरा लक्षण है कि श्रवण कीर्तन के लिए उत्साह होगा, जैसे अंतर नहीं आएगा। हम उस श्लोक की चर्चा कर रहे थे निरंतर, कि निरंतर श्रवण कीर्तन क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि हम में और भगवान में अंतर आ रहा है, हमारी इच्छाओं के वजह से, इस सब के वजह से। तो लक्षण यही है कि गुरु के आदेशों का पालन जब हम करते हैं ठीक से, तो हमें अंदर से एक उत्साह की अनुभूति होती है, दिव्य उत्साह। और दिव्य उत्साह किसके प्रति? भगवान के श्रवण कीर्तन के प्रति, भगवान की सेवा के प्रति। तो जब हम खुद होकर भगवान की सेवा में लगेंगे कि हां आज मैं क्या सेवा करूं, खुद होकर आप सर्विस कमांडर को जाकर पूछो, सर्विस इंचार्ज को जाकर पूछो कि बताओ क्या और मैं सेवा करूं, मैंने पूरा टेंपल हॉल साफ कर दिया और क्या करूं। जब खुद होकर ये उत्साह रहेगा सेवा के लिए, 16 माला करने के बाद उत्साह रहेगा कि और कितने माला मैं करूं, केवल 16 ही क्यों, तो इसका अर्थ है गुरु के आदेशों का पालन हो रहा है। कि श्रवण केवल हफ्ते में एक दिन ही क्यों, रोज क्यों नहीं श्रवण, 24 घंटे क्यों नहीं श्रवण कीर्तन। जब ये सारी इच्छाएं जागृत होने लगेगी हमारे अंदर श्रवण कीर्तन के प्रति, सेवा के प्रति, तो ये सब लक्षण हैं हमारे प्रगति का, और ये लक्षण है गुरु के आदेशों का पालन करने का। और ये सब नहीं हो रहा, इसका अर्थ है कि गुरु के आदेशों का पालन ठीक से नहीं हो रहा। जैसे कि जुहू मंदिर में भक्त श्रील प्रभुपाद जी के पास आए और कहे, प्रभुपाद जी मंदिर में बहुत चूहे आने लगे आजकल, तो प्रभुपाद जी ने कहा बिकॉज यू आर नॉट चैंटिंग, यू आर नॉट चैंटिंग ऑफेंसलेसली। तो उनको समझ में नहीं आया चूहों का हमारे जप से क्या संबंध है। तो प्रभुपाद जी ने समझाया कि क्योंकि तुम लोग ठीक से जप नहीं कर रहे इसलिए तुम्हारा हृदय शुद्ध नहीं हो रहा, हृदय शुद्ध नहीं है अंदर से इसलिए बाहर से गंदगी है, और चूहे कब आते हैं जहां पर गंदगी होती है। तो चूहे आ रहे हैं बाहरी गंदगी को देखकर, और बाहरी गंदगी क्यों है क्योंकि आंतरिक गंदगी है अब तक, और आंतरिक गंदगी अब तक क्यों बनी है क्योंकि जब ठीक से नहीं हो रहा। तो एक गुरु जो है वो ये कनेक्शन लगाते हैं, हमको ये कनेक्शन नहीं लगा पाते कि चूहे क्यों आ रहे हैं क्योंकि हम जब ठीक से नहीं कर रहे। तो हमारा कैलकुलेशन यही रहता है कि मुझे मेरे प्रवचन के बाद 100 लोगों ने गुणगान किया तो मैं भक्ति में प्रगति कर रहा हूं, मतलब हमें लगता है कि ये कनेक्शन हम लगाते हैं। हमारा कनेक्शन हमारे अहंकार से लगता है कि जो भी मेरे अहंकार को बढ़ावा दे वो कनेक्शन हम लगाकर ये निष्कर्ष पर आते हैं कि मैं भक्ति में प्रगति कर रहा हूं, परंतु वो उल्टा कनेक्शन है, वो गलत कनेक्शन है। असली कनेक्शन ये है कि मैं कितना नम्र बन रहा हूं, कितना सहिष्णु, कितना उस भावना में भगवान का श्रवण कीर्तन और सेवा में लगा हूं, ये लक्षण है भक्ति में प्रगति के। इसलिए कहा इट इज नॉट द स्किल बट द सिंसियरिटी विच इज द साइन ऑफ एडवांसमेंट। डोंट मिस्टेक दैट स्किल इज द साइन ऑफ एडवांसमेंट। और कोई प्रश्न?
और प्रभु जी आपने जो बोला कि धारणा ये होना चाहिए कि चैतन्य गुरु सब कुछ देख रहे, लेकिन फिर हम देखते हैं कि अभी मैंने सुना एक घंटा मुझे याद रहेगा, लेकिन जैसे इंद्रिय तृप्ति के विषय सामने आते या कंडीशनिंग होती है सुपरफिशियल लेवल पे होते तो ये हम 2-4 घंटे के बाद या 2 दिन के बाद मैं इस चेतना में नहीं रहूंगा कि चैतन्य गुरु मुझे देख रहे, तो उस धारणा को फिक्स्ड अप कैसे बनाए अपने।
देखिए जैसे हमने ये कूर्म रखा है अंदर, ये कूर्म का उदाहरण भगवान कृष्ण देते हैं गीता में कि जैसे ही कोई भगवान के मंदिर में, इसलिए भगवान के मंदिरों में आप देखोगे कि भगवान के ऑल्टर के सामने वो लोग नीचे जमीन पर कूर्म बनाते हैं, देखा है ना, यहां पर तो साक्षात है हमारे यहां पे, तो कूर्म बनाते हैं और वो कूर्म इस प्रकार से बनाते हैं कि सारे उसके जो अंग हैं बाहर स्प्रेड हुए होते हैं। तो उसका तात्पर्य यह है कि भगवान के सामने अपने सारे इंद्रियों को खोलकर सेवा में लगाना चाहिए। जैसे कूर्म जब खतरा नहीं होता तो अपने सारे इंद्रियों को बाहर खोल कर रखता है, और जैसे ही यदि इसको देखो जैसे ही कुछ खतरा सामने आता है तो इसका मुंह पूरा उसके वो जो ऊपर का जो शेल है उसके अंदर सारे इसके अंग अंदर चले जाते, कुछ नहीं कर सकता कोई इसको। तो एक भक्त को उस प्रकार से जब इंद्रिय भोग के विषय सामने आते हैं तो इसको याद रखो, इसको याद रखो कि जैसे एक कूर्म हमें यह शिक्षा दे रहा है कि सारी इंद्रियों को अंदर ले लाना चाहिए जैसे विषय वस्तु सामने आती है, क्योंकि हम उस स्थिति में नहीं है कि हम उस इंद्रिय भोग के विषयों को भगवान की सेवा में लगा सके। तो हां श्रवण का अर्थ क्या है, जैसे कि इसे मनन भी कहते हैं, श्रवण के बाद उसका मनन होना चाहिए, और मनन की तुलना की गई है कि हम जो श्रवण किए हैं उसका मनन। जैसे कई बार एक ये बहुत ही उदाहरण है, कई बार एक फिल्म का गाना आप सुन लो कहीं पर तो पूरे दिन भर वो उसका मनन चलता रहता है वो फिल्म का गाना। तो श्रवण भगवान का ऐसा होना चाहिए कि जब श्रवण किया आपने आज के दिन तो पूरे दिन भर उसका मनन होना चाहिए। और उदाहरण यह दिया है कि जैसे रेगिस्तान में जो ऊंट होता है वो ऊंट को खाने को बहुत कम मिलता है, पीने को बहुत कम मिलता है, परंतु जब भी मिलता है उसको वो चर्वण करता है, चर्वण। तो ये सब है ना, श्रवण के बाद चर्वण होना चाहिए उसका और मनन होना चाहिए। कि वो चर्वण का अर्थ क्या है, कि उसे वो पूरा खाकर पचा नहीं लेता, एक अंदर थैली रहती है उसमें वो बचा कर रखता है उसे। कब के लिए बचा कर रखता है? जब ऐसी स्थिति और ऐसी जगह आएगी जहां पर कुछ खाने के लिए नहीं, पीने के लिए नहीं, तब उसे वो बाहर निकालता है और उसे फिर से चबाकर फिर से अंदर डालता है। देखा है ये गाय और ऊंट, ये लोग सब, इनके अंदर ये गुण पाए गए हैं। तो उसी प्रकार से हमारा श्रवण भी वैसा होना चाहिए कि ठीक है, सुबह श्रवण किया, उसे स्टोर कर रखो कि जैसे ही बाहर गए और माया का प्रभाव सामने दिखा तो उसको तुरंत वो ऊंट के समान सामने लाओ और अपने आप को उससे रक्षा करो। तो यदि हम इसकी आदत डालेंगे, आदत कैसे शुरू करनी चाहिए कि ठीक है आज का मैंने भागवत का पाठ सुना तो कम से कम 10 बजे तक मैंने सुना तो 10:30 तक तो याद रहना चाहिए। 10:30 ज्यादा हो गया क्या? कई बार तो स्थिति ऐसी है जैसे ही बोला श्रीमद् भागवतम की जय, सब गया, डिलीट, सब कुछ डिलीट हो जाता है। और कई बार तुरंत हमारे वार्तालाप क्या चालू हो जाते हैं कि आज ऑफिस में यह होगा, ये होगा, वो होगा, और हमारे शरीर के साथ अभी क्या हो रहा है, उसकी वार्तालाप चालू हो जाती। तो प्रयास करना चाहिए उसको धीरे धीरे बढ़ाने का कि ठीक है मैंने श्रवण किया, श्रवण करने के पश्चात जैसे बेलगाम के मंदिर में हमारे वो भक्त आए हुए हैं शायद बेलगाम से, ज्योतिबा प्रभु, देवामृत माँ प्रभु ने बहुत अच्छा एक वहां पे नियम शुरू किया था कि क्लास के बाद सारे जो श्रोतागण बैठकर वो चर्चा करते थे कि आज क्लास में क्या सुना उन्होंने, हर एक पॉइंट को क्लास के शुरुआत से अंत तक वो लोग सब क्लास के बाद बैठकर जोर से कि आज क्लास में ये एग्जाम्पल दिया गया इस पॉइंट के ऊपर, आज क्लास में ये कहानी इस पॉइंट को, आज ये श्लोक कोट किया गया, करें हम आज? तो कई बार स्थिति ऐसी होती थी कि जब पूछा जाता था कि हाँ क्या याद है आपको क्लास का, वो याद है जब लास्ट में उन्होंने कहा ग्रंथराज भागवतम की जय, कई बार उतना ही याद रहता है। शुरू का ओम नमो भगवते याद है और लास्ट का ग्रंथराज भागवत की जय ये याद है। तो ये अच्छी प्रथा चालू की थी कि जिसमें श्रोतागण बैठकर वो लोग चर्चा करते थे वो उसका क्या है, चरवण कहते हैं उसको, और फिर उसका मनन करना चाहिए। तो शुरू करना चाहिए ठीक है 10 बजे तक क्लास सुनी तो 10:30 तक तो याद रहनी चाहिए, फिर अगली बार जब सुनेंगे तो उसको 11 कर दो, फिर 12, 1, 2, 3, 4, 5, पूरे दिन भर इस प्रकार से अगर हम अपने मनन का स्टैमिना बढ़ाएं तो क्या होगा, कीर्तनीय सदा हरि, स्मरणीय सदा हरि, मननीय सदा हरि होगा, फिर हर समय उस हरि का सदा कीर्तन स्मरण और मनन होता रहेगा। और कोई प्रश्न? हाँ हाँ, अरे उल्टा होना चाहिए, कार्यालय में हरिनाम जाना चाहिए, यहाँ हरिनाम में कार्यालय आ रहा है। हमारी भक्ति की प्रगति इसमें है कि जब हम कार्यालय में बैठे रहें तो भगवान का स्मरण होते रहना चाहिए, कि जब आप अपने ऑफिस में बैठो, स्थिति यहां तक आनी चाहिए कि जब आप अपने ऑफिस में बैठो और पेन हाथ में लो तो भगवान की बांसुरी याद आनी चाहिए पेन को देखकर। सबसे पहले तो हमें अपने जीवन में यह देखना चाहिए कि मैं किसी का भी टेंशन लूं, वो टेंशन का निष्कर्ष क्या है। जैसे कि छोटा बच्चा जब उसका खिलौना खो जाता है तो बहुत टेंशन में रहता है, तो उसका खिलौना खो गया और उसका टेंशन, आपके अनुसार उसका क्या वैल्यू है? परंतु उस बच्चे को पूछो कि सबसे बड़ा दुख क्या है संसार का गीता के अनुसार, तो बच्चा क्या कहेगा? उसको कहो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, क्या अनुभव हो रहा है? वो कहेगा अरे छोड़ो क्या है बोल रहे हो, मेरा खिलौना लाके दो, सबसे बड़ा टेंशन वो ही है, सबसे बड़ा दुख यही है, भगवान शायद गलती से बोल दिए जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो एक बच्चा जो अपना खिलौना खो चुका है उसका खिलौने के प्रति जो टेंशन है और हमारा कार्यालय के प्रति जो टेंशन है वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से एक ही है। हमको लगता होगा कि मैं जो कार्यालय का टेंशन ले रहा हूं वो बहुत वैल्यूएबल टेंशन है, उसका कोई मूल्य नहीं, जैसे बच्चे के खिलौने का टेंशन का कोई मूल्य नहीं। तो ये सारे कार्यालय के कार्य, ये सब कार्यालय के कार्य दुखालय के कार्य हैं, तो इनका टेंशन लेकर हम और जो हमारा जो दुख है उसको बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए वो जो हमने उदाहरण दिया था बंदर और मगरमच्छ का कहानी, कि उसको पेड़ पर ही छोड़ के आओ, उस कहानी में तो ये तात्पर्य निकला था कि बंदर अपना जो हृदय है वो पेड़ पर छोड़कर आया था। तो हमने ये उदाहरण दिया था कि अपना हृदय हम भगवान के चरणों पर रखकर बाहर जाएं अपने कार्यालय में, ये नहीं कि कार्यालय के जितने भी हृदय हैं उसको लेकर अपने हृदय में डालें। तो इसका ये भी हम उदाहरण ले सकते हैं कि जैसे बंदर ने अपना हृदय पेड़ पर रख दिया था, बोला उसने मगरमच्छ को, कहानी सुने हैं आप, तो उसी प्रकार से हमें जब हम कार्यालय से निकलते हैं तो जो कार्यालय का हृदय है जो टेंशन है उसे उधर ही छोड़कर आओ, उसको अपने साथ घर पर लेकर मत आओ, और घर पर लेकर भी आओ तो माला मत डालो उसको। इसलिए कहा गया है कि नाव बोट में होनी, जो बोट है वो पानी में होनी चाहिए, पानी नाव में आ जाए तो फिर नाव डूबेगी। तो ठीक है हमको कार्यालय जाना पड़ता है और वहां पर कार्य करना पड़ता है, परंतु उस नाव को पानी के ऊपर रहने दो, वो पानी जो है संसार की तुलना पानी से की गई, उस पानी को नाव में मत आने दो, ठीक है। तो चेष्टा ये करो कि कार्यालय में मैं कितना भगवान को याद करूं, ये टेंशन लो आप। और कोई प्रश्न है किसी का? तो बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।